بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت ابدی. خواتین و حضرات السلام علیکم. آج کے پروگرام تلاش میں لائیو آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب جاوید احمد صاحب غامدی, اور ہم آج کچھ اور سوالوں کے جواب تلاش کریں گے غامدی صاحب سے, اور آپ لوگوں کی کالز کا بھی ہمیں انتظار رہے گا. آپ موضوع کی رعایت سے ہم سے گفتگو کر سکتے ہیں, غامدی صاحب سے سوالات کر سکتے ہیں. غامدی صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
غامدی صاحب, آپ سے پچھلی بار پروگرام ہم نے کیا تھا جب ہمارے فوجیوں کی اطلاع آئی تھی جو سیاچین کے گلیشئر تلے ایک حادثے کا شکار ہو گئے, اور ابھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کے آثار کچھ زیادہ نہیں ہوں گے. تو بات کرتے ہوئے ایک سوال اٹھا تھا جس پر ہم کوئی تسلی بخش بات نہیں کر سکے تھے, وہ یہ ہے کہ یہ جب اللہ کی طرف سے کوئی ایک مشکل کسی قوم پر آتی ہے, یہ ایک بڑے پیمانے کا ایک قومی سانحہ تھا, اور اس کے گزرنے کے ساتھ ہی ایک دو روز بعد ہم نے دیکھا کہ یہ کوئٹہ میں اور گلگت میں اوپر تلے واقعات ہوئے جس کے اندر خاص ایک طبقے کو, ایک مکتب فکر کے فالوورز کو نشانہ بنایا گیا. ہم دیکھتے ہیں یہ بھی ایک قومی مسئلے کی صورت اختیار کر چکا ہے. اس پر میرے آپ سے دو سوال ہیں. سوال نمبر ایک یہ ہے جو پچھلی مرتبہ سے ریلیٹڈ ہے, وہ یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ لوگ اللہ تعالی کی طرف سے اگر کوئی سزا ہے یا کوئی آزمائش ہے یا کوئی ہم کو وعید ہے یا کوئی ہمارے ہم کو جگانے کے لیے کوئی اقدام ہے خدا تعالی کی طرف سے, تو اس کا زیادہ تر ہدف غریب لوگ بنتے ہیں یا عام لوگ بنتے ہیں. یہ کیوں ہے ایسا؟ خدا کی یہ حکمت ہماری سمجھ میں نہیں آتی. آپ ہمیں کچھ بتائیے.
یہ دنیا میں خدا کا ایک عام قانون چل رہا ہے, قانون کے تحت بہت سے واقعات حادثات ہوتے رہتے ہیں. اس قانون کے تحت اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو شکر کے امتحان کے لیے منتخب کیا ہے, کچھ لوگوں کو صبر کے امتحان کے لیے منتخب کیا ہے. عمومی طور پر غربت ہم اپنے گرد و پیش دیکھتے ہیں, بیماریاں دیکھتے ہیں, تکلیفیں دیکھتے ہیں. جو لوگ زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں ان کے حالات کیسے کچھ ہیں, اس سے آپ بھی واقف ہیں, میں بھی واقف ہوں. تو یہ ایک عام قانون ہے جس کے تحت کچھ لوگوں کو اس امتحان میں اور کچھ کو اس امتحان میں اللہ تعالیٰ نے مبتلا کر رکھا ہوا ہے. اس امتحان کی نوعیت ایسی نہیں ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کر کے ان پر مسلط کر دیا گیا ہے. کچھ قوانین بنائے گئے ہیں جس میں انسان نے اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے. انسان اپنا کردار بسا اوقات صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا. جو ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے وہ میں نے پوری نہیں کی, جو آپ پر عائد ہوتی ہے وہ آپ نے پوری نہیں کی, جو معاشرے پر بحثیت معاشرہ عائد ہوتی ہے وہ اس نے پوری نہیں کی. اس کے نتیجے میں بھی امتحان کی نوعیت اسی تقسیم کے ساتھ برپا ہوتی رہتی ہے. تو ایک تو یہ عام بات ہے, اس کے تحت غربت اور عمارت کو جس طرح ہم دیکھتے ہیں اس طرح قدرت کا قانون نہیں دیکھتا. یعنی اس میں چونکہ ایک تقسیم کر دی گئی ہے تو اس تقسیم کے تحت بیماریاں, تکلیفیں اور اس نوعیت کی چیزیں آتی رہتی ہیں, اور جو طبقات دبے ہوئے ہوتے ہیں زیادہ تر وہی اس کا نشانہ بنتے رہتے ہیں. اور اس طرح گویا یوں سمجھ لیجئے کہ صبر کے امتحان میں طوالت آتی چلی جاتی ہے, لمبا ہوتا چلا جاتا ہے.
یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے کچھ ڈیزائن کا حصہ ہے یا پھر لوگوں کی اس کے اندر اپنی غلطیاں شامل ہیں جو سبب بنتی ہیں؟
نہیں, ایک چیز تو ڈیزائن کا حصہ ہے نا کہ کچھ لوگ صبر کے امتحان میں مبتلا ہے, کچھ شکر کے امتحان میں مبتلا ہے. یہاں تک تو اصول ہے. اب اس کے بعد ایسا نہیں ہے جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ اس قانون کے تحت یہ تقسیم ہو گئی ہے اور اس میں انسان کا کوئی کردار نہیں ہے. نہیں, پھر انسان کا اپنا کردار اس میں نتائج پہ زمین آسمان کا فرق پیدا کر دیتا ہے. اگر ہم نے افضان صحت کے اصولوں کا خیال نہیں رکھا, ہمارے عمراء نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا, جن کو اقتدار دیا گیا تھا, اختیار دیا گیا تھا, وہ غافل ہو کر پڑے رہے, تو اس کے نتیجے میں پھر وہ سزا بڑھتی چلی جاتی ہے اور وہ قومی سطح تک پھیل جاتی ہے. جب قومی سطح تک یہ معاملات پھیل جاتے ہیں تو بسا اوقات پھر اللہ تعالیٰ انہی چیزوں کو جو پہلے سے موجود ہوتی ہیں تنبیہ کا اور بیداری کا ذریعہ بھی بناتے ہیں. تو یہ اصل میں ایک دوہرا معاملہ ہے. یعنی ایک طرف ایک لا ہے, ایک قانون ہے قدرت کا, جس میں مجھے کچھ کام کرنے ہیں اور اس کے کچھ نتائج نکلنے ہیں. میں نہیں کروں گا تو کچھ دوسرے نتائج اس کے نکل آنے ہیں. میں نے اس کی پچھلی دفعہ بھی مثال دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون دنیا میں کار فرما ہے کہ میں آگ دکھاؤں گا کپڑے کو تو کپڑا آگ پکڑے گا. بالکل اسی طریقے سے اگر میں اپنی ذاتی زندگی میں حفظان صحت کے اصولوں کا خیال نہیں رکھوں گا تو بیماری آئے گی. یہ بالکل صحیح ہے کہ بیماری, تکلیف, مصیبت خدا کے اذن کے بغیر نہیں آتی, لیکن وہ اذن قانون کے تحت حاصل ہوتا ہے. عام حالات میں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ براہ راست مداخلت کرتے ہیں اور کسی چیز کو لوگوں کے لیے عذاب بھی بنا دیتے ہیں. جیسے قرآن مجید کہتا ہے کہ عذاب کی بہت سی صورتیں ہیں, اس میں ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ لیوزی کا باسکم باسکم باس, एक गिरोह को दूसरे गिरोह की ताकत का मजा चखा दिया जाए। तो ये चीजें अल्लाह ताला की तरफ से भी होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कुदरत के अमूमी कानून के तहत भी हो रही होती हैं। अब हमारे पास कोई जरिया ये जानने का नहीं होता कि इस वक्त हमारी गलतियों का इसमें कितना हिस्सा है, कुदरत के कानून के तहत नतायज किस तरह निकल रहे हैं, और इसमें क्या अल्लाह ताला ने इस वक्त बराह रास्त कोई मुदाखलत की है, इसको तय करने का हमारे पास कोई जरिया नहीं होता। हमारे लिए सही रवैया ये है कि हम अपनी गलतियों की तरफ तवज्जो करें और उन गलतियों की इसलाह हर हाल में करें, इसलिए कि एक कम से कम उनसर को जब हम कम कर देते हैं तो दुनिया में मुताला ये बताता है कि बड़ी हद तक ये तकलीफें और मुसीबतें भी कम हो जाती
है। ठीक है गांधी साहब, हमारी आपसे बात जारी है इसी मौजू पर। खातिन हज़रात हमारे साथ रहिएगा और आपकी टेलीफोन कॉल्स का हमें इंतजार होगा, आप हमें कॉल करके गांधी साहब से बात कर सकते हैं। खातिन हज़रात प्रोग्राम तलाश में आपको फिर खुशामदीद कहता हूं। हमारी गांधी साहब से गुफ्तगु हो रही है और उन दो हादसात पर जो पिछले 8 दिन में हमारी कौम पर गुजरे हैं, एक हमारे फौजी भाइयों का हादसा जो ग्लेशियर की नजर हुए और अभी उनकी तलाश का काम जारी है, और दूसरी जानिब ये जो वाकयात पेश आए बलूचिस्तान में और गिलगित में, जहां पर बज़ाहिर मालूम होता है गांधी साहब के ये कोई असल में एक दूसरे ग्रोह को जो एक दूसरे ग्रोह ने निशाना बनाया है और ये कुछ एक तसलसल के साथ ये वाकयात हो रहे हैं। गांधी साहब आपने अपनी लिहाज से ये तो बताया कि अल्लाह ताला की क्या हिकमत होती है, लेकिन वो जो इंसानी अनसर है जो इन गलतियों का बायस बनता है जिनसे हादसात होते हैं, उसमें कौमी फैसले भी होते हैं, क्यादत के कुछ तारीख की रियायत से कुछ न कुछ फैसले होते हैं, जैसे कि सियाचिन का मसला है, वो हमारी फौजी और सियासी क़ियादत को उसको देखना है और हमने उस पर बात भी की थी कि उस पर जरूर नजरसानी करनी चाहिए दोनों मुल्कों को। लेकिन ये जो हमारे यहां एक शिया सुन्नी मसला है जो हमारे मुल्क के अंदर इन दो जगहों पर नुमाया हुआ ऊपर तले, आप इस पर क्या तबसरा करेंगे?
तो सरतसर हमारी गलतियों का नतीजा है। एक ये बात यह है कि आप जब तालीम का कोई नज्म कायम करते हैं तो आपके पेश नजर कुछ मकासद होते हैं, ये खास दुनियावी तालीम हो खा मजहबी तालीम हो। हमारी मजहबी तालीम में जो मजहबी फिक्र पढ़ाया जाता है, अगर आप उसका उसके अंदर उतर कर जायजा लें तो वो ये सारे के सारे अनासिर अपने अंदर लिए हुए हैं, यानी आप ये कह सकते हैं कि उसकी तामीर में ये खराबी मुजमर है। उसके बाद हमने यहां मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल किया। जब सियासी कुवतें मजहबी पस मंजर में वजूद पजीर हुई तो उनको उस तरह की पजीराई नहीं मिली जैसी सियासी जमातों को मिलती है। हमारे मुल्क में ऐसा नहीं हो सका। जब ये नहीं हुआ तो उन्होंने अपने लोगों को इनकलाब के ख्वाब दिखाए थे, वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हुए, लोगों में एक तरह की डिस्प्रेशन पैदा हुई। उसके नतीजे के तौर पर यह फिक्र परवान चढ़ना शुरू हुआ कि जब हमें यह हक हासिल है कि एक मनज़म अकलियत उठे और वो दूसरों पर गलबा हासिल कर ले और अपने नुक्ता नजर के मुताबिक जिस चीज को वो दीन समझे उसका निफाज कर दे, तो लोगों में ये ख्याल पैदा हुआ कि अब दूसरे तरीके इख्तियार करने चाहिए। उसके बाद वो वक्त आ गया जब हमारे यहां रियासत ने इन तमाम अनासिर को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया, अफगान जिहाद के जमाने में भी इस्तेमाल किया, उसके बाद भी इस्तेमाल किया और इस वक्त भी बहुत माजरत के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इसका नतीजा यह निकला कि जब ये तीनों अवामिल मिल गए तो इन्होंने इसको दो आदशा से आदशा बना दिया। चुनाचे ये सब तथा हमारी पॉलिसी, हमारी गलती, हमारी कोताही का नतीजा है जिसको हम भुगत रहे हैं। फिर ये कि इस तरह की चीज अगर कभी पैदा हो जाए तो उसको भी तीनों मकामात पर देखने की जरूरत होती है। एक ये कि जहां फिक्र पैदा हो रहा है क्या वहां नफरत तो नहीं फैलाई जा रही, वहां लोगों को एक दूसरे के खिलाफ तो नहीं भड़काया जा रहा, वहां उनको ये पैगाम तो नहीं दिया जा रहा कि तुम उठो और तुम्हारा अगर बच चले तो दूसरे को मार दो, ये वहां देखा जाए। फिर जहां से वो फिक्र पेश किया जा रहा होता है सोसाइटी की तरफ उसको देखा जाए और बाकायदा मॉनिटर किया जाता रहे, इसलिए माशरे का यह हक है तो वो ये देखता रहे कि क्या महज इल्मी बात हो रही है, क्या महज फिक्री इख्तलाफ हो रहा है, क्या पुरमन तरीके से अपनी बात कही जा रही है, क्या अपना नुकता नजर बयान किया जा रहा है या दूसरों के खिलाफ लोगों को तशद्दुद पर उभारा जा रहा है, नफरत पैदा की जा रही है, इसका भी कभी हमने लिहाज नहीं किया। फिर उसके बाद वो मौका आता है कि जिस मौके के ऊपर लोग मुनज़्ज़म होते हैं और मुनज़्ज़म होकर वो अपनी एक शनाख्त कायम करते हैं, वहां वो शनाख्त किस बुनियाद पर कायम की जा रही है, किसी लसानी बुनियाद पर कायम की जा रही है, किसी फिरके की बुनियाद पर कायम की जा रही है, क्या हम उसकी इजाजत देंगे, फिर ये सवाल पैदा होता है। फिर उसके बाद जब जुर्म का इर्तकाब हो जाता है तो आपका अदालती और कानूनी निजाम फाल किरदार अदा करता है, वो जैसा कुछ किरदार अदा करता है वो आपके सामने है। ये जितने अवामिल हैं ये इंसानी हैं और इन तमाम मकामात पर अदम दर्जे में भी आप ये देखिए कि इन चीजों को रोकने के लिए कोई फिक्र नहीं।
गांधी साहब एक हम कॉल ले लें, आपकी बात तो हम सुन रहे हैं और ये जारी रहेगी, एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम जी।
जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, फरमाइए।
सर अब्दुल्ला कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया से।
जी जनाब।
गांधी साहब से सलामत है और एक दो सवाल है मेरे उनसे।
जी जी इरशाद फरमाइए।
पहला सवाल तो ये है कि कुरान जी भी जगह जगह आ रहा है, ये सब भी हो मिलाए विश्वाद से दर्ज कि दुनिया और जमीन आसमान के अंदर जो चीजें सब अल्लाह की तस्वीर बयान करती हैं, तस्वीर क्या है और इबादत क्या है।
ठीक है, और दूसरा सवाल।
दूसरा मेरा सवाल ये था कि जो इबादत है उसमें और तस्वीर में क्या फर्क है, और क्या ये जो मुरवजा नमाज है क्या ये कुरानी है या सिर्फ कुछ लोगों ने मिलकर ये सिलसिला बना लिया है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का और ऑस्ट्रेलिया से कॉल करने का। गांधी साहब ये बात जो आप फरमा रहे हैं कि ये अवामिल हैं फिक्र के पैदा होने के, फिक्र की नशोशात के और फिक्र को फिर इस्तेमाल करने के और फिर उसका मुनज्जम होकर एक मसल्ला ग्रोह की शक्ल में तब्दील हो जाना, उसके बाद एक और बात भी जो लोग बहुत कहते हैं वो ये है कि इसमें कुछ बैरूनी एजेंट भी हैं, हमारे दुश्मन भी हैं, और वो ज्यादातर रुझान ये होता है कि ये असल में हमारे मुल्क में कोई मसला नहीं है, ये कोई बैरूनी ताकतें हैं जो हम इस मुल्क के दुश्मन हैं, वो ये सूरत हाल पैदा कर देती हैं।
अपने आप को धोखा देने के मुतरादिफ देखिए, जब इस तरह की सूरत किसी कौम में पैदा हो जाती है तो बाहर जो भी होगा उसको हक है कि वो उससे फायदा उठाए और वो फायदा उठा सकता है, लेकिन इसकी बुनियादें हमेशा अपने अंदर होती हैं। मैं तो कमोबेश पिछले 20 वर्षों से ये तवज्जो दिला रहा हूं कि आप जब तक इस नासूर का खात्मा खुद अपने हाँ नहीं करेंगे उस वक्त तक ये सरतान की तरह फैलता चला जाएगा, आप इसको रोक नहीं सकते। चुनाचे आप अगर जायजा लेके देखें, मैं इससे पहले यर्ज कर रहा था आपसे कि किसी जगह पर भी आपको रियासत माशरा सिविल सोसाइटी इन चीजों के बारे में फाल नजर नहीं आएंगे। यानी आप अब भी जाके मस्जिदों में, आप मदारिस में, आप मजहबी मजालिस में नफरत पर मबनी तकरीरें सुन सकते हैं, आप नफरत पर मबनी लिटरेचर पढ़ सकते हैं, आप इस बुनियाद पर कायम शुदा लोगों को जमातें बनाकर काम करते हुए देख सकते हैं। ये सारी चीजें इस वक्त भी सोसाइटी के अंदर उसी तरह मौजूद है। जिस कौम में 20 साल से या 25 साल से ये सब कुछ हो रहा हो और वहां लोग टस से मस में हुए हों कि इन चीजों का मुताला करें, देखें, उनका जायजा लें और उन जगहों से उनको रोकने की कोशिश करें जहां वो पैदा होती हैं। मजहबी अनासिर किसी मौके के ऊपर अल्टीमेटम दे देते हैं, हम फलां काम नहीं होने देंगे, हम मुनज्जम होकर खड़े हो गए हैं, इस मुल्क में ये नहीं हो सकेगा। क्या उस मौके के ऊपर कानून हरकत में आता है और ये पूछता है कि आपको ये कहने का हक किसने दिया था? ये तो आपका हक है कि आप अपनी राय पेश करें, ये तो आपका हक है कि आप राय अम्मा को हमवार करें, ये भी आपका हक है कि आप इस्तदलाल के साथ अपना मौकिफ वाज़े करें, लेकिन ये हक आपने दिया। यानी लबो लहजा जुबान अंदाजे गुफ्तगू, आप ये देखिए कि किसी प्रोग्राम में आपके अगर अदना दर्जे में कोई एक जुमला किसी नुकता नजर के खिलाफ निकल जाए तो किस तरीके से एक भरमार होती है रद्द अमल जाहिर करने वाले लोगों।
गांधी साहब एक
मुख्तलिफ मजहबी फिरकों के रहनुमाओं की रहनुमाई में हो रहा होता है
जी।
लेकिन कोई नोटिस नहीं लेता।
मैं माफी चाहता हूं गांधी साहब, एक कॉल हमें और लेनी है, फिर उसके बाद ब्रेक है और उसके बाद साथी नौजवान हाजिर होंगे। आइए एक सवाल सुन लेते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हमारे साथ कोई कॉलर हैं? अस्सलाम वालेकुम। चलिए हम ब्रेक के बाद कॉल लेंगे, याद दीजिए खातिन आजाद, एक ब्रेक के बाद। खातिन आजाद प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूं। हमारे साथ गांधी साहब तशरीफ फरमाए, हमारी बात हो रही है उनसे आपके सवालों की रोशनी में और इस मौजू पर कि ये जो हमारे यहां क्वेटा और गिलगित में हादसा पेश आया था इसके पीछे क्या अवामिल हैं, हमारी क्या गलतियां। गांधी साहब इस पर आप इरशाद फरमा रहे थे।
जी मैं ये गुजारिश कर रहा था कि इसके तमाम अवामिल हमने खुद जमा किए हैं, उनको परवान चढ़ाया है, हम आज भी सरपस्ती कर रहे हैं, इस वजह से इसको अल्लाह ताला की तरफ निस्बत नहीं देनी चाहिए। यानी ये तो ठीक है कि जब हम गलती करेंगे तो अल्लाह ही का कानून है जिसके तहत कुछ नतीजे निकलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने बराह रास्त मुदाखलत करके ये फसाद पैदा करा दिया, वो ऐसा कभी नहीं करते। हमने ये सब कुछ यहां फराहम किया है और फिर अपने सियासी मकासद के तहत इसको मजीद आग दिखाई है, हमें इस पर तौबा करनी चाहिए, इस पर खुदा से रजू करना चाहिए, हमें सच बोलना सीखना चाहिए, हमें मजहबी चीजों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने से बाज आ जाना चाहिए और आखिरी चीज ये है कि पूरी ताकत के साथ जायजा लेना चाहिए इसके अवामिल कहां कहां है और फिर पूरी सोसाइटी को उन अवामिल को खत्म करने के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए।
ठीक है दानिश साहब, एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनकी बात भी सुन लें। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, क्वेटा से बोला खुरम कंदेश।
जी खुरम साहब फरमाइए।
सर मेरा एक सवाल है, थोड़े से प्रोग्राम के फोटो हट के मेरा क्वेश्चन है कि किसी के हक के खाने के बारे में क्या इस्लाम और शरीयत और कानून क्या कहता है, जबकि एक बहुत बड़ा फोरम पे बैठा हुआ आलिम और बहुत बड़ा स्कॉलर खुद ही उस बंदे का हक खाने वाला हो, तो उसके बारे में हमारा ये हमारी शरीयत हमारा कानून क्या कहता है, जबकि इस तरह के ये ढोंग और ये बेचाने वाले जो बैठे होते हैं स्कॉलर और उनके बारे में इस्लाम क्या कहता है, आया ऐसे इस्लाम के जो है बड़े कहने वाले उन इस्लाम का दर्द देने वाले उसके बात से अमल जाए या अमल किया जाए या नहीं।
ठीक है,
जब खुद ही
बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। गांधी साहब, इससे पहले कि मैं वो शिया सुन्नी मसले पर अपनी बात को खत्म करूं, ये चाहूंगा कि आप मुझे कुछ ये ब्रीफली बताइएगा कि ये दुनिया भर में जो हमारे इस्लाम के दो बड़े ग्रोह हैं शिया और सुन्नी, इनमें हम देखते हैं कि ईरान, शाम, बहरीन, सऊदी अरब और ये गल्फ की रियासतें, आप जानते हैं किस किस जगह पर किन किस फिरके की अक्सरियत है और वहां हुक्मरान कौन है। आप देखते हैं कि सीरिया में और बहरीन में तो ये खासतौर से चपकलिश बहुत नुमाया है, ये फिर लबनान में भी है, ये सऊदी अरब भी इसका शिकार होने को लगता है कि करीब है। ये तारीख में इससे पहले ये मसला इस तरह गालिबन नहीं उठा जिसमें आलमी सतह पर ये कश्मकश इस दर्जे पहुंच गई हो कि हमारे दुश्मन भी इससे फायदा उठा रहे हैं और हम एक दूसरे के लिए भी बहुत ज्यादा हलाकतों का बायस बन गए।
हमारे मुल्क में तो इसकी सूरत बिल्कुल मुख्तलिफ है, उस पर हम बात कर चुके हैं। जहां तक बाहर के ममालिक का ताल्लुक है, अरसे से ये दोनों गिरोह आबाद रहे हैं, इनके आपस में ताल्लुकात और रवाबित रहे हैं, ये इकट्ठे काम करते रहे हैं। वहां अगर कोई कश्मकश या कशाकश की सूरत कहना चाहिए पैदा होती है, तो उस वक्त पैदा होती है जब सियासी मफादात एक दूसरे से टकरा जाते हैं या किसी एक गिरोह के खिलाफ कुछ सियासी इकदाम किए जाते हैं। देखिए, जहां कहीं भी कोई हुकूमत कायम होगी, मौजूदा दौर में जमहूरियत के हक में इनकलाब बरपा हो चुका है, जहनी और फिक्री इनकलाब बरपा हो चुका है, अमली तौर पर जमहूरियत की बुनियाद पर हुकूमतें कायम है। इसमें यह नागुजीर है कि जहां किसी गिरोह की अक्सरियत है हुकूमत में उसका जहूर हो। जब आप जमहूरियत के उसूल को मानने के लिए तैयार हैं, तो फिर आपको उसके इस नतीजे को भी मानना चाहिए। तो जहां जहां इस नतीजे को नहीं माना जा रहा, वहां लोग ये समझते हैं कि इस्तेदादी हुकूमतों के खिलाफ हमें मुनज्जम होकर हथियार उठा लेने चाहिए। अब जब ये हथियार उठाए जाते हैं, तो अगर मिसाल के तौर पर किसी जगह एक गिरोह के नुक्ता नजर को हुकूमत की ताकत हासिल है, तो आपसे आप दूसरे गिरोह की हमदर्दियां उस हुकूमत के साथ हो जाती हैं, और इससे अफराद के दरमियान भी कशाकश की नौबत आ जाती है। बाद मौकों पर तशद्दुद भी हो जाता है, जैसे पिछले दिनों में हुआ, वो बिल्कुल उसी नौयत का तशद्दुद था जिस तरह के आपने लीबिया में देखा, जिस तरह के आपने मिस्र में देखा, कि वहां जब तहरीक चली और एक खास मरहले पर पहुंच गई और हुकूमत ने उसको कोई खास काबिले इतना नहीं समझा, तो फिर लोगों ने हथियार भी उठा लिए और बैरून अक्वामी ताकतों ने बिल्कुल बरबला हथियार उठाने वालों की मदद की। वो एक बिल्कुल दूसरी चीज है। हमारे यहां मामले की नौयत उससे मुख्तलिफ है और हमें इन दोनों को अलग अलग करके देखना चाहिए। वो चीज तो जहां इस्तेदाद होगा वहां पैदा हो जाएगी। इस चीज के लिए अलबत्ता हमारी सोसाइटी के अंदर चूंकि एक बाकायदा हुकूमत कायम है और सिविल सोसाइटी भी बड़ी हद तक मुनज्जम है, उसे जायजा लेकर देखना चाहिए और इसमें बाज इकदाम हैं जो करने नागुजीर हैं। अगर वो हम इकदाम नहीं करेंगे तो ये चीज हमारे सर पर चढ़कर बोलेगी और उस जगह हमें पहुंचा देगी कि जहां हमारी कौम के वजूद को खतरा लाएगा।
मैं गांधी साहब इस पर आपसे भी बात करता हूं, लेकिन एक कॉल लेने की इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो
जी, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम
जी, फरमाइए
जी। गांधी साहब से बात करनी थी
जी, आप फरमाइए, आपकी बात वो सुन रहे हैं।
अच्छा अच्छा सर, किसी को अगर लगा कत्ल कर देना
जी,
तो उसके घर में मतलब बच्चे छोटे हों
जी,
और कोई उसको मकतूल है उसके साथ कोई देने वाले ना हो
जी,
फिर वो उसकी बीवी बच्चे बदधोया ने, तो उस पर असर होगा जो लहक जो कत्ल किया है उन पर।
बहन आपका बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। मैं पहले आप ही का सवाल गांधी साहब के सामने रख देता हूं। गांधी साहब, ये एक दुखी बहन लगती हैं, आपने सवाल सुना उनका?
जी मैंने सुन लिया। देखिए बात यह है कि जिस आदमी ने कत्ल कर दिया है उसको तो अब मेरी आपकी किसी बददुआ का भी कोई मसला बाकी नहीं रहा। अल्लाह ताला ने उसके बारे में बयान फरमा दिया है कि उसने दुनिया के सबसे बड़े जुर्म का इर्तकाब किया। شرک کے بعد جو سب سے بڑا جرم ہے وہ یہ قتل ہی ہے. اور اگر کسی مسلمان کو قتل کیا گیا ہے تو جرم کی شناخت اور بھی بڑھ گئی. قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ کسی ایک انسان کو قتل کر دینے والا شخص اصل میں پوری انسانیت کے قتل کا مجرم ہے. تو وہ اسی حیثیت سے قیامت میں پیش ہوگا. رہ گئی یہ بات کہ دنیا میں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بسا اوقات سزا کی ابتدا دنیا سے بھی ہو جاتی ہے. اور ممکن ہے کہ جن صاحب کا یہ ذکر کر رہی ہیں اگر انہوں نے قتل ناحق کیا ہے تو اس کے کچھ نتائج وہ دنیا میں بھی بھگت لیں, لیکن آخرت تو موجود ہے. اور وہ جب دن آ جائے گا تو اس دن ہر شخص سامنے کھڑا ہوگا اور ہماری یہ بہن بھی کھڑی ہوں گی, اور اس موقع پر معاملہ ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا. یہ پھر جو رویہ وہاں اختیار کریں گی اللہ تعالیٰ اسی کو نافذ کر دے.
نامی صاحب, آپ فرما رہے تھے کہ ہمیں کچھ اقدامات کرنے ہوں گے اس مسئلے کو ایڈریس کرنے کے لیے, میں چاہتا ہوں مختصر نا وہ پلیز بیان کریں.
دیکھیے, سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس کی طرف میں بہت توجہ دلاتا رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے نظام تعلیم کو ٹھیک کرنا ہوگا. یکساں نظام تعلیم کے بغیر آپ اس چیز کو حاصل نہیں کر سکتے. مذہبی تعلیم کا موجودہ نظام ہر حال میں خرابیوں کا باعث ہے, اس کو ختم کرنا ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ علامہ اقبال نے ذرا ہمیں دکھائی تھی کہ مذہبی فکر کی ریکنسٹرکشن کا کام ہو. یہ کام تو اہل علم کرتے ہیں, لیکن اس کام کو سوسائٹی تک پہنچنے کے راستے میں مذہبی پیشوا رکاوٹیں پیدا کر دیتی ہیں. اس میں ان رکاوٹوں کو پوری طاقت قوم کی اور اپنی سوسائٹی کی استعمال کر کے دور کرنا ہوگا. یہ دور ہوگی تو اس کے بعد نیا فکر لوگوں تک پہنچے گا, اور اس سے ان کے ذہن بدلیں گے, ان کا انداز نظر بدلے گا. اس سے عظیم تبدیلیاں آئیں گی اور آ سکتی ہیں, لیکن اس وقت کیونکہ اس پر پابندیاں لگا دی جاتی ہیں, اور جب مذہبی طبقات رد عمل ظاہر کرتے ہیں تو ہمارا میڈیا اور ہمارے مختلف ادارے بھی اس کے سامنے جھک جاتے ہیں, تو نتیجے کے طور پر وہ باتیں ٹھیک طرح سے سوسائٹی میں جہاں جانی چاہیے نہیں جا سکتی. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو تنظیمیں اور جماعتیں بنتی ہیں ان کا جائزہ لے کے دیکھنا چاہیے. وہ سیاسی جماعتیں بنیں, وہ اگر کوئی مذہبی کام کرنا چاہتے ہیں تو مذہبی کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو منظم کریں, لیکن وہ نفرت کی بنیاد پر نہیں بننی چاہیے. آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اپنی بات کہیں, لیکن اپنی بات کے ساتھ اگر آپ دوسروں کے بارے میں فتوے دیتے ہیں اور ان کے قتل کی لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں یا ان کے خلاف تشدد پر لوگوں کو ابھارتے ہیں, تو اس کا بہت دقت نظر سے جائزہ لینے والے باقاعدہ ادارے وجود میں آنے چاہیے. اور جہاں کہیں اس کی ادنا درجے کی بھی شکایت ملے ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچا دینا چاہیے. وہ سوسائٹی کے بدترین دشمن ہیں, ان کا وجود دوبارہ نہیں کرنا چاہیے. فرقہ بندی اور اس طرح کے جتنے بھی عناصر موجود ہوتے ہیں یہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں کہ جو ان میں تشدد پر اترے ہوتے ہیں, ان سے آسانی سے قانون اور سوسائٹی نمٹ لیتی ہے. پھر جب کوئی شخص باقاعدہ جرم کا ارتکاب کر دے تو ہمارے جو موجودہ نظام ہے, یعنی جس میں ہم اس کو پولیس کے حوالے کرتے ہیں یا اقدام کرتے ہیں یا کارروائی کرتے ہیں پھر اس کے بعد عدالت تک لے جاتے ہیں, اس کو بہت شفاف ہونا چاہیے. اس طرح کے مجرموں کے معاملے کی خصوصی نوعیت اگر ہم نے دہشت گردی کے لیے الگ عدالتیں بنا دی ہیں تو ان کے لیے بھی فوری سماعت کی عدالتیں بنائی جا سکتی ہیں, کیونکہ یہ ایک ایسا ناسور ہے جس کو کاٹ دینا ضروری ہے. یہ اگر نہیں کاٹا جائے گا تو یہ پورے جسم کو سرطان کے مرض میں مبتلا کر دے.
یعنی منافرت پھیلانا اتنا بڑا جرم ہونا چاہیے, آپ یہ فرما رہے ہیں؟
میرے نزدیک تو یہ فساد فلرف کا جرم ہے, یعنی اس کے اوپر سخت سے سخت اقدامات خود قرآن نے تجویز کر دیے. قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ اس طرح کے فساد پیدا کرنے والے لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے اور ان کو اپنے انداز طریقے سے قتل کی سزا دی جائے, ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹ دیے جائیں, ان کو سلیپ دے دی جائے. بہت سخت سزائیں آپ دیکھیے سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں. یہ سرتسر فساد پھیلانا ہے. یہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کو اپنی بات کہنے کا حق نہیں. ہمیں بات کہنی ہے, ہم دوسرے پہ تنقید بھی کر سکتے ہیں, لیکن وہ شائستگی سے ہو, تہذیب سے ہو. دوسرے کی بات کا راستہ نہ روکا جائے, اس کے اوپر مختلف قسم کے فتوے نہ لگائے جائے, مختلف قسم کے القابات دے کر اس کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کی جائے. بس جو بات ہے اس کا علمی جواب مجھے بھی دینے کا حق ہے, دوسرے کو بھی دینے کا حق ہے.
رام جی صاحب, آپ
کریں اور ناقابل معافی.
آپ سے ہمارے ناظرین اور کچھ سوال بھی پوچھنا چاہتے ہیں, لیکن ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. خاتین و حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بھائی خاتین و حضرات, پروگرام تلاش میں ہم لائیو بات کر رہے ہیں ایک کالر سے, آئیے دیکھیں وہ کیا فرما رہے ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام, میں کراچی سے عبدالستار شیخ بات کر رہا ہوں. محترم غامدی صاحب بہت اچھے جوابات دیتے ہیں اور یہ بڑا اچھا معلوماتی پروگرام ہے ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اجر دے. میرا سوال یہ ہے کہ جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں مثلاً ورلڈ بینک, آئی ایم ایف, یو ایس ایڈ وغیرہ, بلا شبہ یہ سود پر کام کرتے ہیں, پر عام خیال یہ ہے کہ ان کی مسلمانوں کے حوالے سے نیت اچھی نہیں ہوتی اور یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے غالباً کام کرتے ہیں. ایسے اداروں کے مسلمان ممالک میں ترقیاتی پروجیکٹ بھی ہوتے ہیں جو بلا شبہ وہاں کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہوتے ہیں. ہمارے ملک میں بھی بے شمار ایسے پروجیکٹ ان کے ہیں جو ان کی ترقیات کے اس کے لیے کام ہوئے. اس طرح کے प्रोजेक्ट में कंसल्टेंसी करना या उसका कॉन्ट्रैक्ट लेना या उसमें किसी तरह का काम करना, यानी बराह रास्त मुलाजमत ना करना,
यानी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना, उनको
सर्विसेज प्रोवाइड करना, यानी उसी इदारे से और इस तरह के इदारे से वापस हो गए बगैर,
वो कैसा
तो ये काम कैसा करना कैसा है?
रामजी साहब,
हर शख्स को अपनी असाइनमेंट देखनी चाहिए। देखिए किसी के मुहर्रकात क्या हैं, वो क्या जानता है क्या नहीं जानता, इससे गरज नहीं रखनी चाहिए। ये अलग एक तजिए का मौजू है और कोई शख्स इस मामले में कोई भी राय कायम कर सकता है, लेकिन जो शख्स कोई काम करने जा रहा है उसको ये देखना चाहिए कि जो काम वो कर रहा है वो काम जायज है, वो काम लोगों की फलाह बहबूद का है, उसमें जो असाइनमेंट उसे दी गई है उसमें जाहिर में तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो खराबी का बायस है, तो वो ये काम कर सकता है। मेरे नजदीक दुनिया इसी उसूल पर चलती है, अगर हम मुहर्रकात और पस मंजर को देखना शुरू कर दें तो फिर तो मेरा ख्याल अपनी हुकूमत के साथ भी कोई मामला नहीं किया जा सकता।
ठीक बात। अच्छा गामी साहब, एक कॉलर और हैं। अस्सलाम वालेकुम
जी। वालेकुम सलाम
जनाब, फरमाइए।
ताहिर महमूद क्वेटा से अर्ज कर रहा हूँ
जनाब।
देखें मैं मुख्तसर सवाल करूंगा, ये तो बहुत ही लंबी सी बहस है। दोनों फिरकों के माबैन इस कशीदगी में एक दूसरे की मुकद्दस हस्तियों का इहतराम न करने के सबब को आप किस तरह देखते हैं? क्या ये अदम इहतराम इस मसला की एक बड़ी वजह नहीं है? और ये कहना कि ये पांच हस्तियां पाक हैं बाकी तमाम दुनिया ना पाक है, और इस तरह की जो मैं कहना नहीं चाहता इसकी वजाहत कर दें।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। गामजी साहब, आप तो अवसर फरमाएं।
मेरे नजदीक देखिए इसमें एक उसूल समझ लेना चाहिए। वो उसूल ये है कि अगर तो कोई शख्स अपना नुकता नजर बयान कर रहा है, यानी हर गिरोह हर फिरका या हर नुकता नजर अपना कोई इस्तदलाल रखता है, वो अपना इस्तदलाल बयान कर रहा है। इन्होंने चूंकि जिक्र कर दिया है तो मैं मिसाल दे देता हूं। मिसाल के तौर पर अहले तशय्यो अगर ये कहते हैं कि खुलफाए राशिदीन की हुकूमत को हम नहीं तस्लीम करते, उसके दलायल ये और ये हैं, तो ये हमारे लिए कोई बुरा मानने की चीज नहीं है। उसकी वजह यह कि ये उनका नुकता नजर है, उनकी राय है, इसको उन्हें पेश करने का हक है। इससे आगे बढ़कर अगर वो कोई ऐसा रवैया इख्तियार करते हैं जिसमें इन मुकद्दस हस्तियों के बारे में बुरी जुबान इस्तेमाल की जाती है, लोगों के जज्बात भड़काए जाते हैं, तो उसके बारे में हम इससे पहले गुफ्तगू कर चुके हैं कि इसका हक किसी को भी नहीं होना चाहिए।
हाँ, ये एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी हमें,
ये एक लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी, यानी ये आपको सुनना पड़ेगा। अहले तशय्यों को भी सुनना पड़ेगा कि उनकी इस राय के ऊपर ये तनकीद है और ये तनकीद हमको करने का हक है और उनको सुननी है। बिल्कुल इसी तरह उनकी जो राय या उनका जो मजहब है या नुकता नजर है उसको पेश करने का उनको हक है। इस्तदलाल के साथ पेश करें, अपनी बात बरमला कहें, इसमें किसी मुनाफ़कत की जरूरत नहीं है, लेकिन हुदूद का ख्याल रखें। वो हुदूद क्या है? शाइस्तगी, तहजीब, दूसरे के जज्बात का एहतराम। जिनको कोई दूसरा मुकद्दस समझता है उन शख्सियात के बारे में लबो लहजे में रजानत और वो चीज के जिसको आप इंसानियत का हुस्न कहते हैं।
बहुत शुक्रिया गामी साहब, हमारे आज का प्रोग्राम खत्म हो गया। खातिनों आजाद, एक आध सवाल हमारे पास रहेगा, इंशाल्लाह इसको अगले प्रोग्राम में शामिल कर लेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।